ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. దిల్ తో యహి కర్తా హై కి బాబా కి యాద్ మే బైఠే రహే, ఐసా బాబా కి యాద్ మే ఆనంద్ ఆ రహా హై. ఫిర్ భీ క్యూంకి బహన్ జీ నే ఆగ్యా కియా హై, కుచ్ సునానా హై తో బోల్నా పడేగా. హమ్ సభీ బహుత్ 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 క్యా హై భాగ్యశాలీ హై ఔర్ కుచ్ సౌభాగ్యశాలీ హై యా ఔర్ కుచ్ పద్మా పదం భాగ్యశాలీ. రియలీ సోచో, భాగ్యశాలీ తో హై ఈ సబ్ హై బాబా కే ఛోటే మోటే సబ్, లేకిన్ హమ్ తో పద్మా పదం భాగ్యశాలీ హై. బాబా నే హమే వరదాన్ దియా కే తుమ్ బ్రాహ్మణ బచ్చే జో బరక్ బ్రహ్మా ముఖ మనీషావళీ హై, జిన్కు యే జ్ఞాన్ సమజ్ ఆ గ్యా. బహుత్ హమ్ కే జో నాలెజ్ బాబా జ్ఞాన్ దేతే హై, యే కోయి సింపల్ నహీ హై. బహుత్ యని బుద్ధిగమ్య ఔర్ జిస్ జో హమారే బాబా కే ఇస్ దైవీ ఘరానే కే బచ్చే హై, ఉన్కో హీ సమజ్ ఆతా హై. యహీ జ్ఞాన్ ఆప్ కిసీ కో సునాఓ, బహుత్ ప్రసన్న కరేగా, బహుత్ యే వో క్యా బాతే కరేగా. ఔర్ హమ్ బాబా కే బచ్చే జబ్ యే జ్ఞాన్ హమ్నే సునా, ఆప్నే భీ సునా హోగా, కో బహుత్ మెహనత్ నీ లేనీ పడీ, ఫటాఫట్ జ్ఞాన్ మే ఆ గయే. దేఖో అభీ థోడే దిన్ పహలే క్యా జబర్దస్త్ బాబా కీ మురళీ థీ, ఆప్ సునీ హోగీ రామాయణ మహాభారత్ గీతా. కి అభీ కీ హై దునియా వాలే దేఖో క్యా కర్తే హై, రామాయణ మే యే హై వో హై, సీతా చురాయీ గయీ, రావణ లే గయా, విభీషణ్ థా, జటాయు థా, యే థా, తీర్ మారా, యే క్యా క్యా లంబీ చౌడీ కథ బనా దీ హై బతో. ఓ మహాభారత్ మే దేఖో క్యా హాలత్ హై, పాండవ్ థే, కౌరవ్ థే, యాదవ్ థే, మారే గయే, కితనా లంబా చౌడా విస్తార్ కియా, ఉస్నే తీర్ ఛోడా, ఉస్నే మారా, క్యా రోచక్ బతాయా. ఔర్ బాబా నే క్యా ఉస్ దిన్ బతాయా, థోడే దిన్ పహలే ఆప్ లోగో నే కితనీ వండర్ఫుల్ ఏక్ నాలెజ్ హై, క్యా బతాయా బాబా నే, బచ్చే దశహరా తబ్ హోగా జబ్ క్యా హోగీ, బోలో యాద హై, జబ్ మహాభారత్ హోగీ. దేఖో కహాన్ మహాభారత్, కహాన్ దశహరా. ఔర్ బాబా కితనీ జబర్దస్త్ బాత్ హై యే, ఏ కౌన్ బోల్ రహా హై, ఆల్ మైటీ అథారిటీ, కి దశహరా తబ్ మనాయా జాయేగా జబ్ మహాభారత్ హోగీ. వైసే వో లోగ్ కహతే హై మహాభారత్ తో ద్వాపర్ మే హుయీ, దశహరా వో రామ్ కో వో త్రేతా మే లే గయే, సీతా చురాయేగీ, రావణ్ థా, యే థా, క్యా ఏక్ కహానీ హై. ఔర్ బాబా నే సింపల్ బతా దియా, మహాభారత్ హీ రామాయణ కో సమాప్త్ కరే, యానీ జో సీతా హై వో ఛూటేంగీ, ఉన్కే ఉన్కీ ముక్తి హోగీ, ఔర్ సమ్ బాబా ఆకర్ కే ఉన్కో సాథ్ లే జాయేగా, పరమ ధామ్ మే అయోధ్యా మే లే జాయేగా, ఔర్ ఫిర్ సత్యుగ్ మే భేజ్ దేగా. తో మహాభారత్ ఔర్ రామాయణ కా ఔర్ గీతా కా క్యా బాబా నే సమన్వయ కియా, గీతా క్యా హై, మహాభారత్ క్యా హై, రామాయణ క్యా హై, యే కౌన్ కిస్కీ బుద్ధి మే బైఠ సక్తా హై, హమ్ బచ్చోం కీ బుద్ధి మే. ఆప్ కిస్సే జాకే బాత్ కరే కహతే ఆప్కా దిమాగ్ ఠీక్ హై, మహాభారత్ కా భీ, రామాయణ కా భీ, ఔర్ గీతా కా భీ, ఆప్ తో తీనో కో ఇకట్ఠా మిలా రహే. బాబా నే దేఖో కితనా ఊంచా జ్ఞాన్ దియా. హమ్ భీ జబ్ జ్ఞాన్ మే ఆయే, హమ్ కిసీ కే నా కోయి దాదీ మిలీ, నా కోయి దీదీ మిలీ, నా బాబా సే మిలే థే, నా కిసీ సే మిలే థే, హమే ఏక్ పరిచయ మిలా, ఏక్ భాయి హమారే థే ఓం ప్రకాశ్ జీ, హమ్ పటియాలా మే పఢ్తే థే ఇంజీనియరింగ్ కాలేజ్ మే, ఉన్హోనే జ్ఞాన్ దియా. ఆప్ ఆత్మా హై ఇసీ పర్ జ్ఞాన్ దియా, తో హమ్ తో బహస్ కర్తే లగే, హమ్ ఆత్మా తో సమజ్తే థే హై, లేకిన్ కైసే ఆత్మా హై ఉస్ హమే దిఖాఓ నీ కర్తే థే. తో ఏక్ బార్ ఉన్హోనే కహా, ఆప్ యే మాన్ జాఓ కి ఆప్ ఆత్మా హై. బస్ మేనే కహా హై తో సహీ బాత్ రైట్ హై, ఫిర్ ఆత్మా నికల్తీ హై, ఫిర్ మిట్టీ హో జాతా హై, యానీ వో శరీర్ కో జలా దేతే హై, మెయిన్ టు చీజ్ ఆత్మా హై, యహీ బాత్ మేనే కహా, హమ్ ఆజ్ మాన్తే హై కి హమ్ ఆత్మా హై. బస్ ఇత్నా మేరే ముఖ్ సే నికల్నా థా కి మే ఆత్మా హూ, యే బోలా, ये मैंने माना, उसी समय अनुभूति होनी शुरू होगी। सच कहता हूं, उसी वक्त इतनी ताकत थी उस व्यक्ति में, कहने वाले में। ओ आप जानते, उस वक्त तो बहुत कम लोग थे, हजार भी मुश्किल से होंगे। हम जब ज्ञान में आए 1957 में, शायद आप में कोई पैदा भी नहीं होंगे, 1957 में ज्ञान मिला हमको। उस समय बहुत थोड़े थे, बाबा भी फ्री थे, बाबा फट से टच कर लेते थे, बाबा रस्सी खींच लेते थे, ऐसा होता था। तो क्या हम, मैंने ये बोला कि मैं आत्मा हूं, ये कहा, अनुभूति शुरू हो गई, हल्कापन आ गया, यानी शरीर भान से परे चले गए और देह भान टूटना शुरू हो गया, दृष्टि वृत्ति प्योर होनी शुरू होगी, कमाल हो गया। पहले हम बाजार में जाते थे, हम पढ़ते थे, 20 साल की थी, इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते थे, माँ बाप ने भेजा था पिक्चर देखना, ये देखना, सब कुछ था नहीं, और उल्टी बातें नहीं, मगर फिर भी ये दुनियावी बातें थी, सब बातें छूट गई। ऐसा लगे कि हमें कोई हल्कापन आ गया, यानी एकदम चेंज आ गया लाइफ में, इसी एक ही बात से कि आत्मा है आप शरीर नहीं है। सब मानते तो है ही, लेकिन उसके कहने का तरीका ये था, ऐसा बताया कि वो धारणा हो गई। बाजार में जाएं, बस प्रकृति में ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, सबको आत्मा देखना शुरू कर दिया। हमारा लौकिक नाम भी आत्म प्रकाश है, लेकिन उसी आत्मा स्वरूप में टिक गए, ये बात ऐसी फीलिंग आई। तो मैंने कहा ये तो बहुत वंडरफुल बात है। उस भाई से कहा भी हमें और भी सुनाओ, आपके पास क्या खजाना है। जब उन्होंने सुनाया आत्मा परमात्मा शिव है, अब सोचो एकदम क्लियर कट चीज है, नॉलेज जो है बिल्कुल क्लियर कट। हम पहले राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, सबकी पूजा करते थे, आरती करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु है। और उसकी उस वक्त तो अभी ज्योति बिंदु नहीं निकला था, वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम कहते थे तब। तो मैंने कहा ये बात तो राइट है, इसका नाक नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, ये नहीं, ये तो बात तो ठीक है, निराकार तो राइट आई है। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारा घर परम धाम है, शिव शंकर में अंतर है, ये सब बातें सुनते सुनते एकदम। और फिर कहा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, लोग इस पर मूझते हैं, हमें तो बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि गीता में है लिखा हुआ है अर्जुन, और ये हूबहू रिपीट होता है। ये बात भी बड़ी सुंदर लगी, क्योंकि गीता में है अर्जुन, हम पहले भी थे, अब भी आए, फिर भी मिलते रहेंगे, बहुत बार मिले हैं, है उसमें यह बात। ये राजे रजवाड़े कोई नई बात नहीं है, पहले भी इनका विनाश हुआ था, अब भी है, तो निमित्त बांध खत्म कर। ये बातें सुनकर ऐसा लगा कि ये कौन दे रहा ज्ञान, ये वंडरफुल नॉलेज है। ये राम कौन है, रावण कौन है, हम रोज रामायण वो करते थे, देखते थे, आंसू बहाते थे। अब बताओ राम कौन है, रावण कौन है, कितना बाबा ने वंडरफुल बताए, बातें बताई है। रावण पांच विकार नर के, पांच विकार नारी के, ये बातें सुनकर के बहुत ही खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी, दिमाग जैसे खुल गया। देखो हम अभी रशिया में गए थे, हमारे से उसने इंटरव्यू लिया, प्रश्न पूछा, आपसे भी पूछते हम कि आपका सारी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था। आप सोचो आपका जीवन में हैप्पीएस्ट खुशी का मौका कोई ऐसा बताओ, इंसिडेंट जिसमें आप बहुत खुश थे। अब मैंने कहा भी भाई मैं बताता हूं, मैं तीन बताऊंगा, एक में मैं बड़ा हैप्पी हुआ, दूसरी बार हैप्पियर हुआ, और तीसरी बार हैप्पीस्ट हो गया। तो मैंने कहा ये बात सुनाऊंगा ना, मैं आपको सारा बाबा के साथ का अनुभव आ जाएगा इसमें। उन्होंने कहा कैसे, जब मैंने कहा ज्ञान सुना बड़ी खुशी हुई। सच कहते आप लोगों को खुशी होती कि नहीं, जब आप लोगों ने ज्ञान सुना खुशी हुई कि नहीं हुई आपको, अवश्य खुशी होती, बड़ा वंडरफुल ज्ञान है, बुद्धि गम्य है, एक्सपीरियंसेबल है, साइंटिफिक है, रैशनल है, कोई भक्ति मार्ग है इसमें अंश भी नहीं है, हम बताएं आपको एक भी नहीं। तो मैंने कहा हमें तो ये वो इतनी खुशी हुई, फर्स्ट डे आई वॉज वेरी हैप्पी, दैट वॉज जब मुझे नॉलेज मिला तो बड़ी बड़ी खुशी हुई। और मैंने ये निश्चय किया ये ज्ञान कोई किसी शास्त्र में है क्या, कोई ज्ञान नॉट एट ऑल, ना शास्त्र में है, किसी सन्यासी के पास नहीं, साधु सन्यासी से पूछो, कभी आप टीवी में देखो उनकी बातें सुनो, कभी क्या सुनाते हैं, शुरू करेंगे कहीं से पहुंचेंगे कहीं। एक दिन मैं कोई अपने वो देख रहा था पीएम टीवी, तो उसमें एक आ गया सन्यासी, जो दूसरे और किसी का, वो क्या कह रहा है, अरे चोर ने चोरी की वो भी वही, पुलिस ने पकड़ा वो भी वही, वो ले गए कोर्ट में वो भी वही थे, सजा देने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, ये उनका ज्ञान है। अब बताइए वो सर्वव्यापी की बात, सजा खाने वाला भी वही, देने वाला भी, सब कुछ वही। चलो बाबा को याद करो। शांति। तो मैं बता रहा था कि दुनिया में क्या ज्ञान प्रचलित है, आप जानते हैं ब्रह्मी ब्रह्म वो कहते हैं, लेकिन शिव बाबा ने क्लियर कट नारे दिया, रैशनल, जिसमें कोई रिंचक मात्र भी संशय या ऐसा कुछ बनावट नहीं है। ऐसा ज्ञान ने किसी शास्त्र में ना ऋषि मुनियों सन्यासियों ने किसी ने नहीं दिया। तो मैंने पूछा उस भाई से, भाई आपको ज्ञान कहाँ से मिला, कौन देने वाला है? उन दिनों में अभी त्रिमूर्ति झाड़ भी छपे नहीं थे, छपने वाले जापान से आने थे, अभी छपे नहीं थे, तो हमने ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखा था, अरे किसी को बस ये जबानी सुना था ज्ञान। तो उन्होंने कहा बाबा मम्मा जो है जिनके द्वारा ज्ञान मिलता है वो दिल्ली में है, वो आप जाओ मिलके आओ। हम चले, मैंने कहा तो इतना सुंदर ज्ञान है, चेंज जो एकदम चेंज आ गया लाइफ में नॉलेज से ही, हम देखे कौन देने वाले ज्ञान है। हम पहुंचे दिल्ली में, बाबा मामा से केवल 15-20 दिन ही हुए होंगे, बाबा कहते हैं ना जो नजदीक के होंगे भाग के मिलने आएंगे, तो भाग के हम मिलने के लिए बाबा मामा से गए। और जब क्लास के बाद जैसे नहीं मिलते हैं, मिला बाबा मामा बैठे थे गद्दी पर, तो हम भी जाके मिले। हमारी ब्राह्मणी तो एक थी, वो टेलीफोन कर दिया, मिलाया बाबा को देख करके। उनका शाइनिंग फेस, पर्सनैलिटी, उनकी आईज, बिविचिंग आईज, मम्मा बाबा दोनों की, और उनकी जैसे एंजेलिक पर्सनैलिटी थी, जैसे वो उस पर्सनैलिटी को देख करके बहुत प्रभाव पड़ा और ये निश्चय किया कि यही हमारे जो है रियल में माता पिता है। ये निश्चय उनको देख करके ही हो गया। रियली आई टेल यू, वो कौन है? आदि देव, आदि देवी, बताओ। एडम एंड ईव, आदम और बीबी, एक सभी धर्मों में खुद परमात्मा को और इन दो हस्तियों को सब मानते हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो एडम एंड ईव मानते हैं। इन तीन हस्तियों का बहुत गायन है, तो मैंने कहा मैं उनसे मिल रहा हूं, ऐसा निश्चय हुआ। तो फर्स्ट टाइम उर्दू में हमें किसी ने नहीं कहा था मिलना कैसे है, चाहे बाबा थे या मम्मा, तो उनकी गोद में जाते थे, बाबा मम्मा अपनी गोद में बिठा करके पुचकारते थे, सिर पे हाथ रखते थे, थपथपाते थे, हमारे आंसू आते थे, बहुत बहुत आंसू आए कि बच्चे अब तो मिल गए ना, बहुत क्लब के बाद अब तो आंसू बंद करो, अभी भी देखो मेरे आंसू आने लगे। तो वो उनसे मिले तो बाबा ने वरदान क्या दिया, आप सुन के आश्चर्य खाएंगे क्या वरदान दिया। पहला वरदान, बाबा को पता था कि ये इंजीनियरिंग में पढ़ता है, अभी 4 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर है ये है। बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। बोलो, हु स्पीकिंग? गॉड हिमसेल्फ सेज कि बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं। तो हमें तो वैराग पहले आ चुका था, तो ये तो अब 4 साल 5 साल पढ़ेंगे फिर जा करेंगे, विनाश तो तब भी सामने लगता था, ऐसा लगता था कि विनाश आया क्या आया, कुछ ना कोई झंझट होता था। जब से शिव बाबा ब्रह्मतान में आया तो दुनिया में चैन नहीं रहा, सब दुनिया बेचैन हो गया, सब जगह झगड़े लड़ाइयां पहले भी थे और ज्यादा बढ़ गया, देखा हमने, देखा जगह जगह झगड़े बता, कोई ना कोई समस्या संसार के सामने थी। तो देखा मैंने कहा बाबा बात तो राइट है, तो हम गए वहां से, तो फिर और सब सुनाया, फिर हमने एक दो बार फिर मिलने के लिए आए और मम्मा से मिले, बाबा से मिले, जैसे कि अपने हमारे माता पिता हैं, यही हमारे रियल माता पिता, ऐसी भावना ली। दैट वॉज माई हैप्पियर डे, वो जो दिन था एक बहुत ज्यादा खुशी का दिन था, वो हमें मैं बताया वहां पर हैप्पियर डे था। फिर आगे बढ़े बाबा, फिर बाबा मम्मा से बीच मिलने आते थे, करते थे, बाबा कहते थे बच्चे, हमने एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, फर्स्ट माई फर्स्ट लेटर टू बाबा इन इंग्लिश। वैराग आ गया कि क्या है, दुनिया तो सामने विनाश करा है, क्या करना है, पढ़ाई क्या करनी है। तो हमने कहा क्या पढ़ेंगे, बाबा को लिखा इंग्लिश में, लिखा बाबा आई डोंट वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड रोड्स, बट आई वॉन्ट टू बी ए स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस, जो आप सत्यु की महल बना रहे हैं उसमें एक मैं भी एक पत्थर, नींव का पत्थर बनना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू रन ऑन द रोड, कंस्ट्रक्ट रोड एंड रोड्स हाईवेज, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम देन कमिंग टू गोल्डन एज। आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट एंड पार्सन ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। बाबा उन दोनों में बहुत कहते थे, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, तो हमने कहा हम भी एक हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसा लिखा। तो बाबा ने फिर इंग्लिश में जवाब दिया, बाबा ने क्या क्या, बाबा लिखते थे लाल पेंसिल से, बड़ा 4 5 6 पेज होते थे, लेकिन अक्षर बड़े बड़े होते थे और सार होता था, और दादा विश्वरतन उस पर इंग्लिश में फिर लिखते थे, चाइल्ड और वो बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर पेरेंट्स, ये ज्ञान अपने इंजीनियर्स को दो और साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी दो, ये बाबा की आज्ञा आई। तो हमने कहा ठीक है, हम पढ़ाई से इंटरेस्ट तो बहुत कम हो गया, फिर सेवा में लग गए अपने, बाबा ने कहा इंजीनियर को तो अपने कमरा जो हॉस्टल में रहते थे वहां पर दरी बिछा दी, रात बत्ती लगा दी और सब इंजीनियर्स को बुला करके ज्ञान देना शुरू किया, जो हमारे दोस्त थे उनको देना शुरू किया, जहां भी जाए उन दोनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, तो 10-20 मंगाते थे हम, बस में बैठ जाते थे, सारी बस में बांट देते थे, फिर नीचे उतरते थे जो उनसे वापस लेते थे, पूछते थे क्या पढ़ा आपने, उन दोनों की मैगजीन क्या थी, आजकल तो योग अनुभव ज्ञान कई बातें हैं, सिंपल सिंपल है, उन दिनों में बाबा जो कहते थे बच्चे लिखो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, हेडिंग होते थे गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, पतित पावनी गंगा नहीं, ये सब बातें उस मैगजीन में होती थी। वो जो लोग पढ़ते थे कहते ये आपकी बातें क्या है, ये तो बिल्कुल दुनिया से उल्ट बातें हैं। मैंने कहा बात करो मेरे से, हम जो बोलते थे वो समझ जाते थे। ऐसे हमारे कई स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट बन गए, कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट बन गए, हमारे अपने उसमें ही क्लास होने होगी, हमारा जो कमरा था हॉस्टल का उसमें ही क्लास शुरू कर दी, रोज ग्रामोफोन लाए बजाए, वो थाली वाला होता था ग्रामोफोन, रिकॉर्ड बजाए तू प्यार का सागर है, इस प्रकार से सेवा में लग गया। फिर हम जगह कई वो सेवा केंद्र खुलना था, हर बार उस वक्त मम्मा जो थी वो शिवा द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनके पास जाते थे, उनसे पूछते थे बाबा मम्मा हम कैसे सेंटर खोले, कहते आप तो स्टूडेंट हो क्लास के इंजीनियर कॉलेज के, कोई युगल निकलेगा तभी तो हम कोई बहन दे सकते हैं, तो हमने कोशिश की, फिर एक युगल निकला, स्टूडेंट बने, इस प्रकार से सेवा में लग गए और पटियाला में सेवा केंद्र पहला खुला। उसके बाद फिर हमें बाबा ने कहा था तुम अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो, तो हम अपने लौकिक परिवार में गए, तो आप माने हमें सभी को ज्ञान दिया बिठा करके, आत्मा क्या है परमात्मा क्या, सारे भगत टाइप के थे हमारे माताजी पिताजी सारे, उनको बहुत अच्छा लगा। बाबा ने जो काम ने वैसे करने की कोशिश की, बाकी ये बात तो नहीं है बाबा का तो 8 घंटे याद करो वो तो नहीं हो सका है, बाबा का चलो और कोई बातें नहीं हुई, लेकिन जो बाबा ने ये स्थूल आज्ञा की उसको हमने पूरा करने की कोशिश की। तो उनको बताया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लौकिक फादर थे बड़े भगत थे बहुत, वो अपने जो शहर था गांव बड़ा गांव था उसमें वो भागवत सुनाते थे रात्रि को जाके, ना हमारी खेती थी भागवत सुनाते थे, और वो लोग इनको भगत जी कहते थे, उनको ज्ञान सुना के था बड़ा अच्छा, कृष्ण के बहुत भगत थे, वो कहते थे बात यह ज्ञान तो आपका बड़ा अच्छा, एक कंडीशन मेरी है तब मैं मानू परमात्मा आ चुका है और गीता ज्ञान दे रहा है, एक उनने कंडीशन रख ली, वो कंडीशन रखी कि यदि मुझे कुछ साक्षात्कार हो जाए, कुछ बाबा आपका दिखा दे, तब मानूंगा कि वो मैं परमात्मा जो है वो शिव बाबा आया हुआ ज्ञान दे रहा है। मैंने कहा मुझे तो अभी तक हुआ नहीं है, मैं इतने दिन से चल रहा हूं, मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूं, मुझे तो पता नहीं, फिर भी हम उसको कहा भी हम और मैं देखता था हमारी एक ध्यानी दारी थी पटियाला अम्बाला की, वो पटियाला में आकर भोग लगाती थी, ऐसे याद करती थी, कभी फूल देती थी कभी फल देती थी, हम उनको देखते थे, हम कहते थे ठीक है हमें तो इस ध्यान की बातों में क्या जाना, हमें तो ज्ञान से मतलब है, थोड़ा सा था है क्या है कैसे हम समझते नहीं थे, तो हमने कहा हमें तो पता नहीं इस ज्ञान का, तो फिर भी हम क्या करते थे हर गुरुवार को हम समर वेकेशन थी भोग लगाते थे, भोग लगाओ बाबा को भी बना करके, तो उनने क्या किया हम भोग लगा रहे थे, वो हमारे लौकिक पिताजी उठ के खड़े हो गए, एक दिन खड़े हो गए और वो मैं देख रहा हूँ खड़े क्यों हो गए, और वो किसी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर पकड़ते हैं कभी इधर पकड़ते हैं इधर पकड़ते हैं, यानी वो चक्कर लगा रहे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हाथ में नहीं आता, और फिर वो उतरे बड़े उदास। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी क्या हुआ आपको, किसको पकड़ रहे थे आप, उसने कहा ये रियली इट हैपन बिफोर माई आईज, मेरे सामने हुआ, जबकि मैं अभी नया था ज्यादा ज्ञान भी नहीं सुना था, तो मैंने कहा कुछ हो रहा है समथिंग इज हैपनिंग, तो उसने कहा जी मैं कहीं गया तो बहुत सुंदर, वो श्री कृष्ण के भगत तो थे, बहुत सुंदर छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण सजा सजाया मेरे सामने आया, मैं उसको पकड़ता हूँ यहां पकड़ू तो वहां चला जाए, वहां पकड़ता हूं तो वहां पकड़ा जाए, मेरे हाथ में नहीं आया, तो मैंने कहा फिर मैं बड़ा खुश, आई वॉज हैप्पी, वो तो खुश थे मैं बड़ा खुश, मैंने कम से कम कि हमारे लौकिक परिवार में एक तो एक को तो कुछ दिखाई दिया, तो वो कहने लगे जब मैं थोड़ी देर के बाद फिर आपको जो एक बाबा या आपके आए उन्होंने दिखाया था, उन्होंने कहा बच्चे जब तुम धारणाओं को पालन करोगे खान पान ठीक करोगे तभी श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। उसने ठीक है, उन्होंने अपना जो थोड़ा बहुत था वो तो 50-60 साल के थे, उन्होंने शुरू कर दिया था कुछ धारणा वारणा। फिर अगले दफा हमने भोग लगाया, फिर वो ध्यान में चले गए, ध्यान में गए और फिर वो श्री कृष्ण उनके पकड़ा, श्री कृष्ण को गोद में किया, बड़े आंसू बहाए, सारे वो देख रहे हैं गांव वाले परिवार वाले क्या हो रहा है, ये भगत जी को क्या हो गया। फिर वो थोड़ी देर बाद नीचे उतरे, कहा ओहो आज तो मेरी सारी भक्ति की मनोकामना मेरी पूर्ण हो गई। हम बताएं क्योंकि बाबा जो है शिव बाबा भगवान जो क्या है वो भक्त वत्सलम है, भक्तों की भावना भी पूर्ण करता है। उसकी भावना थी तो उसको आगे बढ़ाना था तो उसको साक्षात्कार करा दिया और श्री कृष्ण को उनकी गोद में आ गए, बड़े खुश हुए, बड़े आंसू बहाए कि आज मेरी जो है वो भावना पूर्ण होगी, मेरी इच्छा पूर्ण होगी। फिर तो इतने वो ध्यान में जाने लगे, बात मत पूछिए। फिर बाबा से मिले, मम्मा से मिले, मम्मा के तो पूरे भक्त थे वो, मम्मा को तो कहते ये राधे बैठी है, ऐसे बोलते थे वो सच्ची। और वो ऐसे फिर बाबा से मिले, मम्मा से मिले, मधुबन में आके रहते थे तो जब सीजन नहीं होता तब हमारी मम्मा उनको बिठाती थी गद्दी पर, प्यारे लाल भोग लगाओ बाबा को आज, वो भोग लगाते थे और हम उनको कुछ संदेश कहें संदेश लाते थे। मैं हैरान होता था, मैं हमने ये करना है कि नहीं करना, लोग एक परिवार में भी बाबा से पूछ के आओ तो बाबा से पूछ के आते थे। इतना एक्यूरेट बात होती थी कि हम तो आश्चर्य खाते थे कैसे वो पूछ के आते, यानी पूरे वो संदेशी बन गए। उसको देख करके पूरा परिवार, माताजी, पिताजी, माताजी पहले ज्ञान में आ गए, 3-4 भाई बहन सारे ज्ञान में चलने लग गए। अभी तक भी लौकिक माता पिताजी चले गए, बाकी सारा परिवार अभी भी ज्ञान में चलता है। तो वो ऐसा ये नजारा हमने भी देख, हमें भी और क्या हुआ, और पक्का हुआ बात। देखो ये हम बताएं आपको, ध्यान का पाठ कोई कम नहीं है। सारे यज्ञ की जो रेवोल्यूशन हुई है, जो वो पूरा वो प्रत्यक्षता हुई है, उसमें पहले पहले शुरू शुरू में बहुत ध्यान का पाठ था। हम जब आते थे पहले शुरू शुरू में 1957 में बाबा कब्रिस्तान बनवाते थे, सारे जो नया हाल है उसमें सब बाबा दृष्टि देते जाएंगे, सब लेटते जाएंगे, लेटते जाएंगे, लेटते जाएंगे, ऐसा करते थे। हम भी लेटे थे एक दफा ऐसे, हम ध्यान में तो नहीं गए लेकिन सब लेट गए, हम भी लेट गए ऐसे। तो इस प्रकार से उसके आने से क्या हुआ, सारा परिवार ज्ञान में आया, अलौकिक 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 बन गए और फिर बाबा मामा से मिलने शुरू कर दिया। हम पढ़ाई में इंटरेस्ट हमारा खत्म हो चुका था, हम जाते थे हफ्ते के बाद जाते थे, लोग कहते थे ये प्रोफेसर भी क्या है, एपी मेहता, हम यस सर कहते थे, लोग हंसते थे देखो जी आ गए हफ्ते के बाद ज्ञान वो क्लास में आ रहे हैं। पता नहीं कैसे करते कराते हम इंजीनियरिंग पास भी कर गए, विदाउट स्टडी आई टेल यू, कोई पढ़ाई नहीं की हमने फिर भी इंजीनियरिंग पास कर ली। डिग्री लेने नहीं गए, हम डिग्री नहीं ली लेकिन इंजीनियरिंग पास करके बाबा मामा के पास आए, लोग माता पिता भी ज्ञान में आ गए, सब आ गए, उनको लेके आए, चलो बाबा मामा से बाबा क्या कहते हैं चलो। बाबा ने कहा, जब मधुबन में पहुंचे बाबा ने कहा, बच्चे मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तो हमने कोई जाब नहीं किया, हम बताया आपको, बाबा ने अपने पास अपनी सेवा में लगा दिया। कब 1961 से हम इस ईश्वरीय सेवा में किसी न किसी रूप में सेवा में लग गए। कितने साल हो गए, 39 and 55 ईयर्स इस यज्ञ में रहते हुए सेवा में हम लगे रहे। कोई ना कोई, उस वक्त तो बहुत कम थे, बहुत कम भाई बहन थे, 1000-2000 होंगे मुश्किल से सारे इंडिया में, सेंटर भी बहुत कम थे। तब चालू हुआ तो हमारे लोग एक फादर कहने लगे मम्मा से बड़े नजदीक थे, मम्मा अगर ये जाप भी करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, तो यज्ञ में करेगा। नहीं, बाबा ने जन्म पत्री देखी है, बाबा ने कहा कि नहीं इसको इस ईश्वरीय सेवा में लगना है। पहला आई वॉज BE डिग्री लेने के सिविल इंजीनियर, बाबा ने हमको इस यज्ञ में समर्पण कर दिया। तब से हम इस सेवा में लगे हुए हैं और चलते रहे। कई वो हमें वहां बनी एग्जीबिशन बनी, एक और हैप्पीएस्ट मोमेंट बताऊंगा आपको, एक और जब एग्जीबिशन बनी बॉम्बे में, तो हम तो कॉपी करने में बड़े होशियार थे, हम पास भी कॉपी करने से हुए थे, इंजीनियरिंग में भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी तो वो कर लेते थे। तो हम कॉपी करने वहां बनी इंजीनियर वो एग्जीबिशन, तो हमने वहां से वो स्लाइड्स मंगा करके एग्जीबिशन बनानी शुरू की। क्या हुआ, बहुत शुरू की और एक बहुत सुंदर वो चित्रों का सेट, 20 चित्रों का सेट ऑयल पेंटिंग बना करके बाबा के पास ले आए, ले आए बाबा के पास। उस वक्त हिस्ट्री ऑल बन चुका था, बाबा थे, दीदी थी और भी थे, सब ने वो 20 चित्र देखे और पसंद आया बाबा को। उस वक्त तो बाबा क्या नहीं करा सकता था, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों से काम लेना था तो बाबा ने देख के बड़ा, बाबा ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई करेक्शन भी दी, डायरेक्शन भी दी और कुछ भी कहा। लेकिन फिर बाबा ने चित्र देखने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलाया। देखो और हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, तो मैं गया, बाबा गद्दी पर बैठे थे, आप ही कमरे में देखना, एक गद्दी है, एक चारपाई है, बाबा गद्दी पर बैठे थे, तो मैं नीचे बैठने लगा। बाबा ने कहा नहीं नहीं मेरे साथ गद्दी पर बैठो। बाबा बड़ा, कोई बच्चा काम करने वाला चाहिए ना बच्चों, बाबा को, बाबा करण करावनहार करा सकता है लेकिन निमित्त तो किसी को बनाना था ना। बाबा ने कहा बच्चे मेरे साथ बैठो, गद्दी पर साथ बिठाया और मैं हिचक रहा था कि मैं बाबा के साथ कैसे बैठूं, फिर भी बैठ गया। बाबा ने प्यार किया, बाबा के फिर वरदान देखो, क्या वरदान था, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। तो कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, गॉड हिमसेल्फ थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां बोलो, कहां पर, गोल्डन एज में बाबा ने वरदान दे दिया। बहुत उमंग उसाया, बताओ कौन बोल रहा है, गॉड हिमसेल्फ थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल रहा है कि बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। अब देखो आप भी तो ऐसे हैं, किसकी गद्दी संभाली हुई आपने, क्या समझते हैं घर किसका है, वो बोलो बाबा का, कोई वो लेगा नहीं, ये तो समझो कि हमारा नहीं बाबा का है। अगर आप समझते हैं जहां जो चेयर है, जो जिस जगह पर मैं हूं, मेरा नहीं बाबा का है, उस वो करण करावनहार मेरे से करा रहा है, तो वो समझेंगे तो वहां भी मिलेगा। फिर अगर मेरा है, मैं करने वाला हूं, मैं करेंगे तो फिर वो गद्दी नहीं मिलेगी। अब देखो हमारा ज्ञान अमृत भवन हम संभालते हैं, बाबा का मैगजीन जो निकलता है वो संभालते हैं, लिटरेचर छपवाते हैं, वो करते, किसका है ये, हमारा थोड़ा है, ये बाबा का काम है, बाबा का ही सारा कारोबार है ना। हम यहां संभालते हैं तो वहां भी संभालेंगे, फिर ये जान लो। तो क्या समझने हमें, ये जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी, और ये भी प्रैक्टिकली उसको ऐसे यूज करना है कि ये बाबा का है, मेरा नहीं। अगर उसको उस प्रकार से संभालेंगे तो वहां भी मालिक बनेंगे। ये देख लो, ये बाबा ने वरदान दिया, इस वरदान से इतना उमंग उत्साह, क्या हुआ, क्या बनी, सैकड़ों हजारों प्रदर्शनियां बनी, हमने एक स्टूडियो बना दिया, आर्टिस्ट लगा दिए, हमें लोग फादर से कुछ मिला था, वो हमने जमीन बेची थी तो वो मिला, तो हमने म्यूजियम बने, मेले बने, क्या क्या काम हुआ बता। उन दिनों में तो ये कंप्यूटर था नहीं कि मेले प्रदर्शनी बने, सारे एक एक चीज हाथ से बनानी पड़ती थी, नाक मुंह कान सब, लक्ष्मी नारायण बने, त्रिमूर्ति बने, झाड़ बने, बहुत कुछ वहां पर बना। तो जगह जगह हम बाबा भेजते थे बच्चे, वहां जाओ, वहां म्यूजियम बनना है, वहां म्यूजियम बने, बहुत सारे इंडिया की सैर बवानी कराई, इस प्रकार से सेवाएं की, चलती रही चलती रही। बाबा अव्यक्त हुए, हमें ये काम फिर भी चलता रहा। फिर उसके बाद फॉरेन सेवा शुरू हुई। हाँ एक बार मैं और बताता हूं आपको, बीच में रह गई। हैप्पीएस्ट डे वो था जब बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, दैट वाज माई हैप्पीएस्ट। ये वरदान सुन करके बहुत मुझे हैप्पी खुशी हुई, हैप्पीएस्ट डे था, तो मैं ये हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट बताया आपको। फिर तो उस वक्त तो जगदीश भाई जी तो थे, हाँ हमें जब बाबा के पास आए, बाबा ने हमको दिल्ली भेज दिया जगदीश भाई जी के पास। जगदीश भाई को आप जानते हैं कि नहीं, कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करें, हाँ कुछ लोग जानते हैं। हमारे जगदीश भाई जी बहुत बहुत बड़े भाई, चीफ स्पोक्समैन, राइटर, उसके बाद वो थिंकर, बाबा के ज्ञान को, सना उनका नाम संजय था, बाबा का ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना, उस तरह से लिखना, लेखक महान लेखक थे, 200 किताबें लिखी है। हम उनके साथ, हमें भी उनके साथ रहने का मौका मिला, उनके साथ सीखने का मौका मिला, बहुत हमें ये भी लक है कि ऐसे महान आत्माओं के साथ भी मिलने का मौका मिला रहा है। तो उसके बाद वहां पर ट्रेनिंग ली, कुछ किया, फिर चित्रशाला बन गई, ये बन गया। फिर जब वो फॉरेन में बिजी हो गए, फिर हमको कहा गया कि ये ज्ञान निर्मित बढ़ने वाली लिटरेचर, इसकी भी ड्यूटी आप संभालो, तो हमें भी वो भी ड्यूटी मिल गई। हम तो इन कार्यों में बिजी हो गए, फिर भी आते रहते थे, बाबा से मिलना, दादियों से मिलना, सब हुआ। इस तरह से करते 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 92 तक हम दिल्ली में रहे, यानी 61 टू लेकर 92 तक दिल्ली में इन कार्यों में हम बिजी रहे। एग्जीबिशन भी बनवाते थे, लिटरेचर भी था, मैगजीन भी थी, सारा इस कारोबार में रहे। फिर 92 में जब देखा कि मैगजीन बढ़ रहा है, लिटरेचर बढ़ रहा है, संस्था बढ़ रही है, बहुत प्रिंटिंग हो गया है, तो हमने फिर बड़ी दादी ने हमें प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक मशीन लेने के लिए पैसे दिए, तो मशीन ली। उसके बाद फिर वहां से शिफ्ट करके हम यहाँ 92 में शांतिवन में आ गए। 92 से लेकर अब है 2016, 25 साल लगभग हो गए हैं वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो यहाँ पर चालू है, वो चल रही है। मैं एक बात सुना रहा था, एक बाबा की बात मुझे और बतानी थी कि बाबा हमेशा सभी कोई भी कार्यो आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराते थे। एक दफा मैं जब आया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, बाबा अभी उस टेनिस कोर्ट, आप जानते जो बाबा का भी शांति स्तंभ ना, ये टेनिस कोर्ट था, कोई मकान नहीं थे उस वक्त, ये भी नहीं था, हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। बाबा क्या खेल रहे थे बच्चों के साथ, क्या खेल रहे थे? बैडमिंटन नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। होते ना ये जो गलियों में वो छोटे सी बाल डालते और वो ऐसे बाबा ऐसे मार रहे थे, दादा विचुरतन फेंकते थे, वो करते थे, बच्चे जैसे पकड़ते थे, हंसते थे, बहलते थे। जैसे मुझे वो सीन याद आया, श्री कृष्ण वो जमुना के कंठे पर वो बाल फेंकी, क्या वो था ना कहानी आती है भागवत में, वो आई याद। तो हम मैं उनके बाबा का फोटो लेने लगा, मैंने कहा ये बहुत 80 साल की एज थी उस वक्त, 80 ईयर्स, और खेल रहे हैं बाबा ऐसे। तो मैंने उनकी फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, नहीं नहीं, बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, ये कौन बोल रहा है, मेरा ब्रह्मा बाबा के भी नहीं आएगा, शिव बाबा के भी, मेरा फोटो तो आएगा नहीं, और ये शरीर किसी काम का नहीं। बाबा हमेशा यही कहते थे, बच्चे शरीर को देखो मत, इसलिए मैं आज तक मेरा फोटो ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं है। बाबा ने कहा कि क्या दरकार है, फोटो मत खींचो। हमने फिर खींच तो लिया, लेकिन बाबा ने मना किया। हमेशा बाबा कहते थे देह से न्यारे बनो, न्यारे बनो, न्यारे बनो, हमेशा बाबा यही कहते थे। तो हम देखते थे कि खुद भी प्रैक्टिस करते थे और बच्चों से भी कराते थे। बाबा के साथ घूमने जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे, बच्चे किन के साथ घूम रहे हो, किन के पीछे चल रहे हो? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों। कोई बाबा से भाकी पहनेगा, बच्चे किससे मिल रहे हो? शिव बाबा से मिल रहे हैं। हर बार हर बात में शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा वो याद कराते थे, सिखाते थे। इस प्रकार से चलते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत टाइम बीत गया है, अब तो नजदीक है, बहुत नदियों में पानी बह गया है, अब तो अविनाश आया के आया। आप कहते हैं ये बाबा तो बहुत बार कहता आया, होता तो है नहीं। हम बताए नहीं, जो बाबा ने कोई बात कही है वो पूरी पूरी हुई है जरूर। हम जब बैठते थे उन दिनों मधुबन में 15-20 होते थे, आते थे, बाबा कहता था फॉरनर्स आएंगे, साधु सन्यासी आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। मामा बाबा अभी कैसे आएंगे, यहाँ तो कुछ अभी दिखता ही नहीं है, अभी तो कुछ देखो, देखो सब बातें पूरी हुई, कितने 25,000 भाई बहन आए हुए हैं और अभी आने को तैयार है, वो कोटा मिलता है कि तुम आओ नहीं अभी तो, ये क्या पूरी बात हुई क्यों नहीं? कितने लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वकील आते हैं, जजेस आते हैं, सारी बातें, फॉरनर्स कितने आते हैं बताओ। जो बाबा ने बात कहा पूरी हुई। अब भी बाबा कह रहा है बच्चे जो चीज तुमको दिखाई देती है ये नहीं दिखाई देगी, ये बाबा के महावाक्य है। और जो नहीं दिखाई दे रहा वो आपको दिखाई देगी, वो गोल्डन एज दिखाई देगा, वो होगा जरूर होगा, जरूर होगा, भगवानो वाच। उसके लिए तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी? पक्का होना है जरूर, निश्चिंत रहिए आप। ऐसे नहीं कि बहुत टाइम बीत गया है, अपना पता नहीं और सृष्टि का भी, आप तो सृष्टि का भरोसा भी नहीं है। हम बताएं, फिर हम बताएं आपको दूसरी बात के अब करना क्या है हमको, मेन बात। दूसरा, बाप समान बने कैसे? अब तो ठीक है बाबा की बातें सुनाई, और बातें भी बहुत सारी हैं, कैसे चित्र बने। बाबा कहते बच्चे तुम हर हफ्ते मेरे पास आओ दिल्ली से। और उस एक जनता गाड़ी होती थी, जब पता नहीं 22 घंटे लेती, 18 घंटे लेती थी, आओ जाओ दो दिन पूरे हो जाते थे। मैंने बाबा कैसे आऊं? भगवान हो वाच, आप आओ। लेकिन मैं तो वो बात पूरी नहीं कर सका, हर हफ्ते नहीं आ सका, हम काम में बिजी होते थे। बाबा कहता मैं कैसे आऊं बताओ। तो कहने का मतलब ये है, अभी हमने करना क्या है? अब टाइम तो आपका हो गया, लेकिन फिर थोड़ा सा और टाइम ले लेता हूं। करना क्या है? व्हाट बाबा बिकेम अव्यक्त, फरिश्ता बन गए, फरिश्ता बन गए वो, प्रसाद करते करते कराते कराते कर्मातीत फरिश्ता बन गए। और अभी हमारी इंतजार कर रहे हैं, बच्चे आओ मैं इंतजार करूं, मैं तुमको ले चलता हूं, मैं तुम्हारी इंतजार करूं। कैसे बनेंगे कर्मातीत फरिश्ता? बनना इतना बाप समान, ओ बिच बाप समान, शिव बाबा जैसे तो नहीं बन सकते, ब्रह्मा बाप समान तो बाबा कहते हैं बनो। कैसे बनेंगे? हाउ टू, कहां तक बने हैं? पहले ये देखे कहां तक बने हैं, कितना फासला बाकी है बताओ, कितना है, कि पहुंच गए नजदीक, हाँ या ना? नजदीक पहुंच गए बाबा जैसे बन गए? तो बोलता नहीं है, चलो हम बहुत दूरी है अभी, है ना फासला का नहीं है? फासला है ना, फासला है। कैसे पूरा होगा? हाउ टू बिकम, देखो बाबा कर्मातीत फरिश्ता बन गए। फरिश्ता बनने की पहली स्टेज क्या है? देखो मैं पूछता हूं, कर्मातीत फरिश्ता बनने की फर्स्ट स्टेज क्या है? मैं बताऊं, आप बताएं, टाइम लग जाएगा। पहले है विकर्मा जीत बनना। अब हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, सुन लो, कोई विकर्म नहीं। पुराने विकर्मों को तो विनाश करना है, परंतु अभी कान को भात लगाया कि हमारे से कोई विकर्म नहीं हो, वो विकर्म ठीक है। इसमें मैं कहता हूं सब ब्राह्मण पास होंगे, हैं पास? अभी हैं पास? हाँ देखो सब ब्राह्मण पास। विकर्मा जीत तो बनना ही है, वो तो पहली स्टेज है, कोई विकर्म ना हो। दूसरी स्टेज क्या है? व्हाट इज सेकंड स्टेज? दूसरी स्टेज है नो विकल्प, विकल्पा जीत। अब हमारे ब्राह्मणों में कोई विकल्प ना आए, समझे, मन में विकल्प, दृष्टि वृत्ति में विकल्प ना हो, इज सेकंड स्टेज। इसमें भी पास होंगे सारे, मैं समझता हूं, हैं आप देख लो, इज सेकंड ओनली स्टेज। बाप समान बनने की पहली स्टेज तो वो है, नो विकर्म, नो विकल्प, विकल्पा जीत। बाबा को भी आता था कि मेरे बच्चों में अब विकर्म भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, ठीक है ना। आप सभी में भी ये होगा कि मेरे में विकल्प भी नहीं आते और वो भी नहीं। देखो विकल्प आना मींस जो आपने पुरुषार्थ करके बैटरी चार्ज किया है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सुन लो। संकल्पों, शुद्ध संकल्पों से हम चार्ज करते हैं, अगर विकल्प आ गया तो बैटरी डिस्चार्ज, क्या मेहनत खत्म हुई। इसलिए नो विकल्प, विकल्पा जीत भी आप होंगे, आई अंडरस्टैंड। अब विकल्प क्या आएंगे? आप तो हम सब वानप्रस्थ अवस्था में है सभी, नो विकल्प, ठीक है, नो विकल्प। अब थर्ड स्टेज क्या है? देखो थर्ड स्टेज है व्यर्थ आतीत, इट इज थर्ड स्टेज, व्यर्थ ना आए, ठीक है। अब व्यर्थ भी नहीं आता होगा, व्यर्थ किसे कहते हैं? हम पहले मुरली में बाबा कहते थे क्यों क्या कब कैसे कौन कैसा, ये इन बातों में आना ये व्यर्थ है, टू मच में जाना व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसे फायदा कुछ नहीं है, क्यों क्या कब कैसे कैसे ये। लेकिन दादी गुलजार जी ने क्लास कराई थी एक दफा, बड़ा और आगे बढ़ाया। बच्चे अभी आप यहां बैठे हो, आपको दिल्ली का ख्याल आ गया तो बैठे यहां दिल्ली पहुंच गए आप, ये भी व्यर्थ है। यानी जो संकल्प हमें नहीं चाहिए वो आ जाना, ये भी व्यर्थ में शुमार हो जाएगा। यानी भले इससे नुकसान नहीं है, इससे वो कोई टाइम तो वेस्ट चला गया ना। तो क्या बनना है, बाबा कहता है, बाबा को ये है आदत है, बाबा को ये फेथ हम बच्चों में, मेरे बच्चे विकर्म भी नहीं करते, विकल्प भी नहीं होंगे, अभी थोड़ा थोड़ा व्यर्थ है, बाबा ये कहते हैं। अब हमको व्यर्थ अतीत बनना है, नो व्यर्थ। बाबा कहते हैं सिवाय याद के, सिवाय शुद्ध संकल्पों के कुछ भी आता है तो वो कोई काम का नहीं है। देखो अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प सफल करना है। संगम जा रहा है, उड़ के उड़ता जा रहा है, बीतता जा रहा है। अपना समय को, अपने श्वास को, अपने संकल्पों को सफल करना ही वास्तव में व्यर्थ अतीत बनना है। अब व्यर्थ भी ना आए, विकल्प भी ना आए, और विकर्म तो हो ही ना, वो तो बात ही छोड़ो, इन तीनों से परे जाएंगे तो क्या बन जाएंगे फिर हम, क्या करें, कैसे ना आए, क्यों, क्या पुरुषार्थ क्या है इसका, व्यर्थ ना है उसका पुरुषार्थ क्या है। यानी देखो चार प्रकार संकल्प है, एक है विकल्प, एक है व्यर्थ और एक है शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। नेगेटिव से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है और पॉजिटिव से हमारी बैटरी चार्ज होती है, यह है बात। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जब भी समय मिले, क्या कौन सा पॉजिटिव, कोई नई बात करने की दरकार नहीं है, सिंपल, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, लाइट और माइट हूं, खुश नसीब आत्मा हूं। और बाबा ने अभी कहा मैं आज्ञाकारी आत्मा हूं, अब थोड़े दिन था क्या, ये आत्मा हूं। अपने को याद करो, अपने घर को याद करो, बाबा को याद करो, मन बुद्धि, मन में ये शुद्ध संकल्प हो और बुद्धि बाबा पर टिकी हो, ज्योति बिंदु पर टिकी हो। देखिए और ऐसा संकल्प हटाओ क्या दरकार है, छोड़ो, याद करो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बाबा ने क्या कहा था, मेरे बच्चे सुनते तो बहुत है, अब भी आप सुन रहे हैं, लेकिन रिवाइज नहीं करते। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार रीज करेंगे नहीं, रियलाइज नहीं होगा। भगवानों वाच अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो रियलाइज नहीं होगा। क्या रिवाइज करना है, यही मैं कौन, दादी मई रोज रिवाइज करती, दादी जान के जी, मैं कौन, मैं कहां का, किसका, यही मेरा कौन, मैं कौन, यही बात रिवाइज करनी है। बट प्रत्यक्ष उसको लाना है मन में, मन में और संकल्पों को हटाओ, इन शुद्ध संकल्पों को लाओ, व्यर्थ भी चला जाएगा, विकल्प की तो बात ही छोड़ो। अगेन एंड अगेन रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, जितना रिवाइज करेंगे उतना रियलाइज होगा। हम पूछते हैं, यहां हमारे बहुत आए हुए हैं हमारे कॉलोनी के लोग, आजकल कैसा चल रहा है, सारा दिन योग है ही है, सब दिन योग ही योग है भाई, योग। बाबा मुरली में पता क्या कहते हैं, एक तरफ एक पैर में कहेंगे बच्चे अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करो, क्या मुश्किल है, कहते ना बाबा बहुत इजी है, बहुत सहज है। और दूसरे पैर में फिर ये कहते हैं बच्चे यथार्थ याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, ये भी साथ कह देते हैं, ये यथार्थ याद, एलिमिनेशन ऑफ ऑल अदर संकल्प, सब संकल्प हटाओ, इन शुद्ध संकल्पों को बार बार लाओ, बार बार लाओ, बार बार लाओ, और व्यर्थ आएगा नहीं, विकल्प आएगा नहीं। दिस इज पुरुषार्थ, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हमको शुद्ध संकल्पों को पॉजिटिव संकल्पों को बार 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 लाना है, ना व्यर्थ आएगा ना विकल्प आएगा ना कुछ आएगा। पॉजिटिव पावर से क्या मिलती है, पॉजिटिव संकल्प से क्या मिलती है, प्योरिटी एंड पावर, दो चीजें प्राप्त होती है। और सत्युग में क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, क्राउन ऑफ प्योरिटी लाइट एंड क्राउन ऑफ पावर माइट, वो ये पॉजिटिव संकल्पों से मिलती है। जितना आप पॉजिटिव संकल्प करते जाएंगे आपका सब चीज ठीक हो जाएगी। और संकल्पों को त्यागो, छोड़ो, ये करना है वो करना है, अपने आप सेवा होगी, हम बता दें आपको, अपने आप लोग सुनने आएंगे, अपने आप आपसे सुनेंगे, आपको चांस मिलेंगे। अगर आप यू आर गोइंग इन पॉजिटिव संकल्प, अगर आप पॉजिटिव संकल्प कर रहे हैं करते जा रहे हैं, और सब संकल्पों को हटा के पॉजिटिव संकल्प करते हैं। ये पॉजिटिव में यही शुद्ध संकल्प जो बाबा ने बताया है, बाकी हम तो ज्यादा सोचते नहीं भाई, ज्यादा डीप में जाते नहीं, जो बाबा ने संकल्प बताए हैं उनको बार बार आप करते रहो। और करते करते मैं अभी हम कहते हैं ये जो युग है संगम युग, इसमें एक दुर्लभ चीज मिलती है, न सत्युग में मिलती, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, एक संगम पर मिलती है अभी ब्राह्मणों को, वही ले सकते हैं। वो कौन सी चीज है, अति इंद्रिय सुख, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक और खुशी, हम खुश तो सब हैं, अब मिल रहे हैं आपसे खुशी हो रही है, अब दादी से मिले खुशी, बाबा से मिले खुशी, ये खुशी दिस इज समथिंग। तो इससे भी ज्यादा जो है अति इंद्रिय सुख, आंतरिक जैसे हम कहते हैं आनंद जिसे कहते हैं, वो प्राप्ति होती है याद से, वो उसका तरीका है। आई टेल यू, एक तो बाबा खींचता है वो बात अलग है, वो तो बाबा की मदद है, एक वो तो अपने पुरुषार्थ से हम अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, वो बड़ा मजा आ रहा है, खुशी आ रही है, आनंद आ रहा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो संगम पर मिलती है और कभी मिलेगी नहीं, उसकी प्राप्ति खूब करो। अगर नहीं तरीका आता तो पूछो, बड़ों से पूछो कैसे अति इंद्रिय सुख कैसे प्राप्त होगा, कैसे आप प्राप्त करते हैं, वो देखो। उसको प्राप्त करने के लिए वो याद का पुरुषार्थ है, प्योरिटी है, याद है, कई बातें हैं, उस वो प्राप्ति होनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा, अब वो हम बाप समान बनेंगे। देखो बाबा के संग हम बैठते थे, उनका बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था, साधारण नहीं था, ऑलवेज विशेष। तो हम बच्चों का भी हर कदम, हर कर्म, हर बोल और हर जो है वो विशेष होना चाहिए, तभी जो है हम बाप समान बनेंगे। आशा है आप इन जो मैंने बोला उसको पुरुषार्थ में ला करके शुद्ध संकल्पों में रमन कर करके हम कर्मातीत फरिश्ता बन ही जाएंगे। बनना किसको है, बनना भी हम बच्चों को बाबा कहते हैं, और कहां से आएंगे, आप बच्चे ही बनेंगे, वो बनेंगे जरूर, ऐसी मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति।